उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। इस पुस्तक का मुख्य प्रश्न ये है, यदि परमेश्वर प्रेमी और सर्वशक्तिमान है तो धर्मी पर संकट क्यों आता है? मनुष्य जाति पर ऐसे भय, संकट और विपत्तियों के रहते कैसे माना जाए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्यायी है? परंतु इसराइलियों का ये अटूट विश्वास था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सिद्ध न्यायी है। अय्यूब यद्यपि खरा और सीधा था और बुराई से परे रहता था, फिर भी उसे सीखना था कि वो संकट में भी परमेश्वर की सामर्थ और उसकी भलाई पर भरोसा रख सके, स्वधर्मी और घमंडी नहीं वरन दीन बनकर पश्चाताप करे और परमेश्वर की महानता और प्रताप को माने। और पीड़ा का संबंध सदा पाप के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर अपने भक्त को परखने और उसे शिक्षा देने के लिए भी प्रायः इनका उपयोग करता है। तो आइए श्रोताओ, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मांगने से ज्यादा मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम बाइबल की पुस्तक में से अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करना आरंभ कर रहे हैं। आज हम उसके परिचय को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। इस समय जब हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी हम इस पुस्तक से सीखते हैं, निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन के लिए शांति और आनंद का कारण ठहरे। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी और चिंतित हैं। पिताजी, आप उनकी भी सुधि लीजिए, ताकि प्रत्येक जीवन आप में शांति को प्राप्त कर सके। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अय्यूब की पुस्तक एक आसान एवं अद्भुत पुस्तक है। यह काव्य रचनाओं में पहली पुस्तक है। भजन संग्रह या भजन संहिता, नीति वचन, सवोपदेशक, श्रेष्ठ गीत आदि सब काव्य रचनाओं में आते हैं। कविता की पुस्तकों से अर्थ है लेखन शैली, न कि कल्पना और अस्थिर चित लेख। कविता से यहाँ यह भी न समझा जाए कि इसमें लय होगी। इब्रानी भाषा में कविता का अर्थ है विचारों का पुनरावरण या अनुरूपता। अय्यूब की पुस्तक में वाद विवाद कविता रूप में प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण वार्तालाप कविता रूप में ही है। अय्यूब की पुस्तक का लेखक अज्ञात है। मूसा को भी इसका लेखक माना जाता है और अन्य विचार हैं कि एज्रा, सुलेमान, अय्यूब एवं स्वयं इस पुस्तक का एक चरित्र एलीहू भी इसके लेखक में हो सकते हैं। वही एलीहू जिसने अय्यूब को सांत्वना तो दी परंतु और अधिक दुखी कर दिया। एलीहू के लेखक होने का संकेत अय्यूब अध्याय 32 पद 16 और 17 में मिलता है। इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं, क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, यह वार्तालाप का संदर्भ नहीं है, परंतु लेखक प्रथम पुरुष में अपने विचार लिख रहा है। इसके पश्चात वार्तालाप आरंभ होता है और एलीहू विचार व्यक्त करता है। इससे संकेत मिलता है कि एलीहू इस पुस्तक का लेखक है। एक और रोचक बात यह है कि हमें अय्यूब के युग का भी ज्ञान नहीं है। निसंदेह लिखा है कि वह ऊज देश का रहने वाला था, परंतु ऊज कहाँ था हम नहीं जानते। हम उसका निश्चित भूगोल भी नहीं दर्शा सकते। यह बड़ी विचित्र बात है कि जैसा पुस्तकों के लिए आवश्यक होता है, इस पुस्तक का स्थान एवं समय स्पष्ट नहीं है। मेरा विचार है कि अय्यूब की पुस्तक पितरों के युग की है। संभव है कि अय्यूब याकूब से परिचित था, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में व्यवस्था विवरण व्यक्त मूसा की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि इसका लेखन काल निर्गमन से पूर्व का है। इसमें निर्गमन के समय की घटनाओं का भी उल्लेख या संदर्भ नहीं है। अय्यूब को पितरों के युग में मानने के तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, अय्यूब का जीवन काल। अय्यूब 42 अध्याय उसके 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और चार पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था की दीर्घायु होकर मर गया। हम जानते हैं कि पितरों के युग में मनुष्य दीर्घायु होता था, जैसा कि अय्यूब। और दूसरी बात देखते हैं, अय्यूब अपने परिवार के लिए महायाजक था। क्योंकि इस पुस्तक में इसराइल वंशियों का या याजक वृत्ति का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उसका युग उनसे पूर्व का था। और तीसरी बात है, एलीपज एसाव के जेठे पुत्र का वंशज था। उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अय्यूब याकूब का समकालीन था। यह पुस्तक एक महान दर्शन शास्त्र है और इस पुस्तक में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। पहला है, अय्यूब की पुस्तक में एक प्रश्न उभरता है, धर्मी जन कष्ट क्यों उठाता है? मुझे कहना पड़ेगा कि इस पुस्तक में धर्मी के कष्ट उठाने का एक कारण दिया गया है। मैं यह नहीं मानता कि यही इस पुस्तक की मुख्य शिक्षा है, परंतु अनेक बाइबल विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। दूसरा है, अय्यूब की पुस्तक लिखने का उद्देश्य है कि मनुष्य पर लाई गई शैतान की बुराइयों की भत्सरना की जाए। और तीसरी बात, अय्यूब की पुस्तक अय्यूब का स्वयं से साक्षात्कार करवाने के लिए लिखी गई थी। और चौथा है, अय्यूब की पुस्तक सहनशीलता की शिक्षा देती है। याकूब के पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। क्या अय्यूब धीरजवंत या सहनशील था? पुस्तक के अंत में हम इस विषय पर ध्यान देंगे। और पांचवी बात है, मेरे विचार में पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है मन फिराव की शिक्षा देना। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो कृपया पुस्तक के अंत तक हमारे साथ रुके रहें, इसके पश्चात अपना निष्कर्ष निकालें। मनुष्य जब भी मन फिराव की चर्चा करना चाहता है और कुछ लिखना चाहता है, तब वह सदैव ही ऐसे चरित्र का चुनाव करता है जो पहले पाप में रहा हो। उदाहरण स्वरूप, मनुष्य का संदर्भ दिया जाता है क्योंकि वह सबसे बड़ा अधर्मी राजा था। हमने पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका अध्ययन किया है। उसने अंततः मन फिराया। हम ऐसे ही मन फिराव को देखना चाहते हैं। तर्शीश का शाउल प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा बैरी था, परंतु एक दिन उसने मन फिराया। अफीसी के संत फ्रांसिस अपने युग का कुलीन लंपट था, उसने भी मन फिराया, परंतु परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को नहीं चुना कि मन फिराव का उदाहरण दे। जी हाँ, परमेश्वर ने पुराने नियम के युग का वरन यीशु के अतिरिक्त आज तक का सबसे महान धर्मी जन चुना कि मनुष्य के लिए मन फिराव की आवश्यकता का उल्लेख करें। इस पुस्तक के अंत में हम अय्यूब को स्वयं कहते हुए सुनते हैं। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। इससे प्रत्येक विश्वासी, इस पुस्तक के प्रत्येक पाठक को शिक्षा ग्रहण करना है कि हम चाहे स्वयं को कितना भी धर्मी समझें, हमें परमेश्वर की दृष्टि से स्वयं को देखना है। हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है। हम सबको मन फिराना होगा। जी हाँ, अनेकों ने स्वीकार किया है कि यह एक महान दर्शन शास्त्र है। टेनिसन ने इस पुस्तक के विषय में कहा, प्राचीन युग हो या आधुनिक, यह एक महान काव्य रचना है। किसी दर्शन शास्त्री ने कहा, मैं इसे कलम द्वारा लिखी गई महानतम पुस्तकों में से एक कहता हूँ। मार्टिन लूथर ने कहा कि यह पुस्तक धर्मशास्त्र की पुस्तकों में सबसे अधिक भव्य एवं अद्भुत पुस्तक है। डॉक्टर मूरहेड ने कहा, अय्यूब की पुस्तक संपूर्ण साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कविता है। अय्यूब की पुस्तक का गद भाग स्वर्ग और पृथ्वी का एक विशाल नाटक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह कल्पना है। अय्यूब धर्मशास्त्र का एक ऐतिहासिक चरित्र है। आप देख सकते हैं यजेकिल की पुस्तक 14 अध्याय उसके 14 और 20 पद में, याकूब के पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में, पौलुस अय्यूब की पुस्तक के संदर्भ को देता है। अनेक लेखकों ने अय्यूब की पुस्तक को अपने लेखों में कथा वस्तु स्वरूप काम में लिया है, जैसे एच जी वेल्स, आर्ची वाइल्ड, मॉकलिस, जबकि वह अपने नाटक जेबी में इसके उद्देश्य से चूक गया है। अय्यूब अपने साथियों के समक्ष अपने आप को धर्मी ठहराता है और यहाँ तक कि वह परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करना चाहता है, और ऐसा करने पर उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ कि उसे मन फिराव की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यह किसी रूप में भी आधुनिक मानव का विवरण नहीं है। आज मनोवैज्ञानिक मनुष्य को समझाते हैं कि उसकी समस्या का कारण है कि उसकी माता ने उससे उतना प्रेम नहीं किया जितना आवश्यक है। मेरे विचार में इस पीढ़ी के साथ समस्या यह है कि माताएं उन्हें आवश्यकता के अनुसार नहीं थपथपाती हैं। कहा जाता है कि माता पिता बच्चों को अनदेखा करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें सच्चाई है और यह समस्या का एक कारण भी है, तथापि हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आज का मनुष्य अपनी दुर्बलता, अक्षमता और पाप का दोष नहीं लेना चाहता है। वह किसी और को दोष देना चाहता है। वह अपने और अपने कामों का उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, एक मनुष्य है जिसने हमारे पापों को उठा लिया। आप और मैं इसके बोध के साथ उसके पास ना आ जाएं, तब तक हम पापी हैं। मेरे प्रियो, हम किसी और को दोष दे रहे हैं जो वास्तव में दोषी है ही नहीं। मेरे विचार में यह मनुष्य की नीचता है कि वह अपने पापों का दोष अपनी माता को दे। यह एक जघन्य बात है, परंतु आज यही हो रहा है। आज का मनुष्य विषम परिस्थितियों में है और घोर निराशा से घिरा हुआ है। वह अपने पापों का दोष दूसरों पर डाल रहा है। उसे जो शांति चाहिए उसे पाने के लिए वह कहां कहां जाए। शांति की खोज में उसने अपने आप को भौतिकवाद और सांसारिकता से घेर रखा है। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जिसके पलंग पर अनेक बिजली के बटन लगे हुए थे। वह कहीं भी बत्ती जला सकता था, घंटी बजा सकता था, लेटे लेटे दरवाजा खोल सकता था, बाहर की बत्तियां जला सकता था। जी हाँ, वह सब कुछ लेटे लेटे ही कर सकता था। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं देखी थी। उसके लिए वह महान सुविधा थी। अनेक जन ऐसा ही करते हैं। हम सब की अपनी अपनी सुरक्षा है जिसमें हम आराम पाना चाहते हैं। आज लोग रोबोट बनाने में लगे हैं ताकि उन्हें सुविधा प्राप्त हो। तथापि आज के मनुष्य की समस्या यह है कि उसका निवेश परमेश्वर के अधीन नहीं है। वह नहीं जानता कि एक उद्धार करता है जिसके पास वह आ सकता है। अय्यूब ऐसा नहीं था। वह परमेश्वर में विश्वास रखता था, और हम देखेंगे कि परमेश्वर अय्यूब को कठिन परिस्थितियों में डालता है और अंत में उसे अपनी उपस्थिति में लाता है। परमेश्वर ने अय्यूब को अपने आप में ले आने के लिए उसका सब कुछ नष्ट करवा दिया। आज का मनुष्य भी सब सुख सुविधाओं के उपरांत कठिन परिस्थिति में आ जाता है। सब साधनों के रहते हुए भी वह समुन्द्र में एक लकड़ी पर लटका हुआ तैर रहा है और नहीं जानता कि वह कहाँ है और कहाँ जा रहा है। यह बड़े ही भय की बात है। और सच तो यह है कि कुछ लोग यह सोचने पर बाध्य हैं कि कहीं तो कोई है। एक गीत बड़ा ही प्रचलित हुआ था। इस अंग्रेजी गीत का अनुवाद है, गलीली पुरुष के हाथ में हाथ देकर चलो। जी हाँ, यह उसकी निकटता में आना तो है, परंतु उसके समक्ष अपना पापी स्वभाव लाना और उसे मुक्तिदाता ग्रहण करना अभी दूर है। आज मनुष्य जीवन के समर्पण की चर्चा करता है। प्रसंगवश आपका समर्पण क्या है? आप यह नहीं कह सकते, प्रभु, हे प्रभु, और उससे आपका प्रभु एवं स्वामी बन जाने की आशा करें। पहले तो उसे आपका उद्धारकर्ता बनना है। वह आपके लिए अपनी जान दे चुका है। यदि आप प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर से आरंभ नहीं करते हैं, तो आप उसके साथ कहीं से भी आरंभ नहीं कर सकते। मैंने आपका समय लिया है, परंतु मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण है। अय्यूब को अपने कष्टों में भी परमेश्वर की उपस्थिति का बोध था। वह आज के मनुष्य की नाई मझदार में नहीं था। अय्यूब जिस बात पर विस्मित था वह थी कि परमेश्वर ने उसे कष्ट क्यों दिया। अय्यूब को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे मन फिराव की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार किया तब उसे इसका बोध हुआ। मेरे मित्रों, आइए अब हम अय्यूब की पुस्तक उसके एक अध्याय को देखें, जिसका विषय है स्वर्ग और पृथ्वी पर नाटक, ऊज देश। अय्यूब की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ऊज देश मध्य एशिया में था, परंतु इससे अधिक जानकारी हमें नहीं है। जोसेफुस एक इतिहासकार हमें इसके बारे में कुछ जानकारी देता है। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसके 22 और 23 पद में ऊज को शेम के पुत्र आराम का पुत्र कहा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 20 और 21 पद में ऊज नाहोर का जेठा पुत्र है। नाहोर अब्राहम का भाई था। जोसेफुस कहता है कि ऊज प्राचीन नगर दमिश्क का संस्थापक था। दमिश्क संसार का प्राचीनतम नगर है जो अब तक लगातार निवास में है। अतः मेरे विचार में अय्यूब सीरिया के रेगिस्तान में कहीं वास करता था। यही वह रेगिस्तान था जहां प्रभु पौलुस को अध्ययन के लिए ले गया था। परमेश्वर ने अपने अनेक भक्तों को उस रेगिस्तान में शिक्षण एवं अनुशासन प्रदान किया है। मेरे मित्रों, आपका ऊज और मेरा ऊज भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग स्थान हो सकते हैं। वह इस पृथ्वी पर कहीं भी हो हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर उस स्थान में हमें अनेक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना चाहता है। लिखा है कि अय्यूब धार्मिकता में सिद्ध था। उसे खरा मनुष्य कहा गया है तो इसका अर्थ क्या है? पद 5 के अनुसार वह होम बलि चढ़ाता था, अर्थात परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पवित्र करता था। उस युग के बलिदान होम बलि ही थे। वह परमेश्वर का भय मानता था। उसके मन में परमेश्वर के प्रति उच्च एवं पवित्र श्रद्धा थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह बुराई से घृणा करता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि वह आज के मनुष्य से भिन्न था, जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अय्यूब की पुस्तक एक अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। ध्यान दीजिए कि उसके परिवार में 10 बच्चे थे। वह धनवान था और सब सुख सुविधा में वास कर रहे थे। उसके पास ऊंट थे, अतः वह आज के ट्रांसपोर्टर के तुल्य था। उसके पास दूध के लिए गदहियां थी। उस युग में गदही का दूध स्वादिष्ट माना जाता था। मैं इसकी लालसा करता हूँ। वह समृद्ध था। पद 3 के अंतिम भाग से विदित होता है कि वह आज के सब करोड़पतियों के बराबर अकेला ही था। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। अर्थात वे सुख सुविधा में वास कर रहे थे, परंतु देखिए उसके मन में फिर भी परमेश्वर का भय था। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अय्यूब अपने लिए बलि नहीं चढ़ाता था। उसके विचार में वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। वह सोचता था कि उसकी संतान संभवतः परमेश्वर के उतना निकट नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। अतः वह उनके लिए बलि चढ़ाता था। वह अपने परिवार का महायाजक था। मेरे प्रियो, पहला दृश्य अब समाप्त होता है। यह एक धनवान मनुष्य के प्रिय परिवार का एक अति उत्तम दृश्य है। उसके पास सब कुछ था, परंतु उसके मन में एक भय था। आज के माता पिता के मन में भी वही भय है। वह जानता था कि वह समस्या का हल नहीं खोज पाएगा, अतः वह परमेश्वर के पास जाता है। मेरे मित्रों, आज अनेक माता पिता परेशान हैं क्योंकि उनके पुत्र या पुत्री ने घर त्याग दिया है और वे समस्या में हैं, संभवतः नशे की आदत में हैं, बुरी संगति में हैं। इनमें से अधिकांश माता पिता अय्यूब की नाई परमेश्वर के पास नहीं गए हैं, अर्थात नहीं जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे समस्या को बिना समाधान लिए बैठे हैं। अय्यूब जानता था कि अपने भय को लेकर कहां जाना है। वह अपने संतान के लिए होम बलि चढ़ाता था, जो मसीह का प्रतीक है। अय्यूब परमेश्वर का भक्त था। मेरे मित्रों, क्या आज आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की निकटता में आते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के सम्मुख अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? यदि आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि अय्यूब के जीवन से आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु के निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। चंगाई मैंने पाई है शांति यीशु।